युक्ति एक निर्णय करके बन रहा है कि जड़ कौन चेतन कौन सत कौन मिथ्या कौन। तो भगवान कहते ना सतो विद्यते भावो, अरे ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सत जो पदार्थ है उसका कभी अभाव होता ही नहीं, वो सदा कायम ही रहता। अरे ना सतो विद्यते भावो, जो मिथ्या जो चीज है असत जो है वो कायम रहता है। ये तो बतला दिया, पर यहाँ समझो कि सत्य कौन और मिथ्या कौन, कि अंत वंत इन्हें देखा और नित्य शोभता सभी जिने अनासीनो अप्रमेय तस्मात युद्ध भारत। नाश तो विद्यते अभाव, ना भाव विद्यते सतह, ये दूसरे जाकर सोड़ा था। और उसका यहाँ निर्णय करके बतला रहे हैं ये 18 के श्लोक में क्या कहा कि अंत अंत इमे देखा, ये देह जो है आदि अंत वाला, अरे नित्य शोभता शरीर ने, शरीर जो शरीर के मरने वाला जो आत्मा वो नित्य का, अनाशीनो अप्रमेय वो अविनाशी है और अप्रमेय है उसे, वो इयंता करके नहीं बतलाया जाता कि ये आत्मा। फिर आगे जाकर एकदम खुला साफ कर दिया, न जायते मृत्ये वा कदाचित नाइन भूतवा भविता वा न हुआ, अजो नित्य शास्त्र तोयं पुराणों ने हन्न ते हन्न माने शरीर। ये वेति हंतारं यस्य मन्नते खत्म उभौतौ न बीजानी तो नायंति हन्नते न जायते मृत्ये वा कदाचित नाइन भूतवा भविता वा न हुआ, अजो नित्य शास्त्रोयं पुराणों न हन्नते हन्न माने शरीरे। अयं आत्मा, ये जो आत्मा है ये किसी को मारता है, हनन क्रिया का ये करता है, ऐसा जो मानता है वो भी मूर्ख नहीं है। अगर कोई ऐसा माने कि हनन क्रिया का ये कर्म है, आत्मा दूसरे के द्वारा मारा जाता है, ऐसा कोई माने वो भी नहीं जानता। वो तो उन्हें जानी तो ना घनती ना हमती, न तो किसी को मारता है न दूसरों के द्वारा कभी मारा जाता है। तो आत्मा जो है न कभी जन्मता है न कभी मरता है, और न जैसे कोई चीज पैदा होकर कायम हो ऐसे कायम होता है। आत्मा तो अज है, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश होता है। तो यहाँ शरीर को तो विनाशशील बताया और आत्मा को अविनाशी बताया, और जो विनाशशील चीज है जिस चीज का अभाव हो जाता है वो असत है, और जिसका कभी अभाव होता नहीं जो कायम रहे वो सत है। तो आत्मा कायम है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं, और आत्मा जो सदा अव्यक्त है, शरीर के संबंध से व्यक्ति भाव वाला प्रतीत होता है किंतु वास्तव में अव्यक्त, अव्यक्तादि भूतानि और व्यक्त मध्यानि वारत, और अव्यक्त निध नाने व तत्र का परिदेव न, सारे भूत प्राणी आदि के मां अव्यक्त, अंत के मां अव्यक्त, और बीच की अवस्था में व्यक्ति भाव वाले प्रतीत होते हैं। तो इसे तो व्यक्तित्व का यदि अभाव हो जावे, नष्ट हो जावे, तो इसके लिए क्या शोक करें। तो ये बताया कि ये ऐसा, और आत्मा के लिए अच्छे जो यमदा जो यकली जो सो से ए बचो, और नित्य सर्वगत स्थानु असगो यम सनातन अव्यक्तो यम चिंतो यो यमुच्यते। ये आत्मा का ने कटे अच्छे थे, और न जड़े अदाग्य, और न गए अकलित थे, और न सूखे अशुष्क, क्या के नित्य और सब जगह के। आत्मा केवल शरीर में ऐसा नहीं, सब जगह के भी, तो सब जगह में तो परमात्मा है। मतलब परमात्मा आत्मा का यहाँ भेद, इसीलिए तो बताया जाता है कि सब जगह में जो ब्रह्म है वो एक प्रकार से, ये तो शरीर के संबंध से एक जैसी दिखता है, सर्व जगह है और अचिंत है, मन की भी सामर्थ्य नहीं आत्मा का चिंतन करते। मन के द्वारा तू जिसका चिंतन करता है वो ब्रह्म नहीं है, मन जिसकी शक्ति को पा करके, जिस परमात्मा की शक्ति को पा करके और अपने मनन करता है ब्रह्म के नाम से, ब्रह्म के रूप से मनन करता है, वो ब्रह्म नहीं। जिसको मन के द्वारा मनन किया जाता है, मन जिसका मनन करता है, वो ब्रह्म नहीं है। तो वो ब्रह्म है कि जिसकी शक्ति के प्रभाव से मन जो है सो मनन करता है, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से कि संकेत स्थिति ब्रह्म को बताया उपनिषदों के बीच में, केरु उपनिषद के वहां। तो अब ये बात हुई कि ठीक है, नित्य सर्वगत है स्थान आचर माने इसमें चलन और हरण क्रिया नहीं, क्रिया रहित और सनातन सदा से एक रस है और अव्यक्त है, निराकार और अचिंत है और निर्विकार, आत्मा में कोई विकार नहीं। जैसे आकाश में कोई विकार नहीं, कोई क्रिया नहीं, आकाश के भीतर के बीच के वहां बादल होते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, तो आकाश क्यों कहते हैं? निर्लेप है आकाश, निर्विकार। इसी प्रकार से कि आत्मा निर्लेप है, निर्विकार और निराकार, कोई आकार नहीं आत्मा, और अक्रिय है आत्मा, अनन क्रिया का करता नहीं क्योंकि क्रिया रही, इसमें कोई क्रिया नहीं आत्मा। तो विकार नहीं, क्रिया नहीं, आकार नहीं, इन सब दोस्तों से आत्मा रहित है, शुद्ध है, चेतन है। और ये विकार वाली चीज क्या है? शरीर। इसलिए ये विनाशशील है, अनित है, क्षणिक है, जड़ है। तो इसे ये बात बताई, ये विनाशशील जो पदार्थ है, इसके नाश होने के बाद में आत्मा अविनाशी, वो बच जाता है, वो सत्य है, नित्य है, चेतन है। तो यहां इस दृष्टि से कहा। अब दूसरी दृष्टि और कि जो कुछ है सब मैं हूं, इससे बताया कि जो कुछ है सब ब्रह्म है। अरे दूसरी बात ये बताई कि जो कुछ है सब मैं हूं। एक तो ये बताया कि आत्मा जो है मेरा स्वरूप है और वो अविनाशी और नित्य है, इन सब के नाश होने से मेरा नाश नहीं होता, माने आत्मा का नाश नहीं होता। अब दूसरा ये कि जो कुछ हो सब आत्मा, सर्वभूतस्तम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युतात्मा और सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन, सब जगह के मस्तम भाव से देखने वाला साधक। व्याख्यान के बाद नोट करें, तो हमारे दिमाग के बीच के मां इतना लंबा व्याख्यान है, वो सब उसे वंचित रह जावे और वो उसी प्रश्न उत्तर में चल जाए। खूब याद कर ले, व्याख्यान बंद करने के बाद थोड़ा अपने क्या करना है। सबसे ये प्रार्थना की भी है कि व्याख्यान के बीच में कुछ नहीं, वो जो बात नहीं समझ में आवे वो पेंसिल और कागज हाथ में रखे, उसको नोट कर दे, तो हमारे पर बड़ी दया होगी और हमारे पर भी सबके ऊपर की दया सुनी। सब लोगों ने पूछ लिया कि तुम भी हमारी दया मानोगे? सब कह देंगे हम दया मानेंगे। हम तो क्या कहता था, हम सर्वभूतस्म आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगी भूतात्मा सर्वतर समदर्शनम्। ये छठी अध्याय का 29 का श्लोक है। योगी भूतात्मा, योग युक्त आत्मा क्या? योग या ब्रह्म का वाचक, ब्रह्म के माध्यम की आत्मा युक्त है, यानी जो ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति होगी है और जिसका नाम ब्रह्म भूत है, ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ऐसा जो है उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म के माँ युक्त है आत्मा, जिस वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी ब्रह्म भूत, यानी ब्रह्म स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं समझता, ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता है, उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्ता, इसी का नाम है ब्रह्म भूत। इसी के ये 29 का श्लोक क्षति का, और इसी प्रकरण में 27 के श्लोक में इसी का वाचक ब्रह्म भूत शब्द है, उसी का प्रकरण है।
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विरक्तकलमस प्रशान्तात्मा विरक्तधीर ब्रह्मचारी वर्तेष्यत प्रशान्त मनसं खेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं अकरन्तम्। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विरक्त कलम से सुखे न ब्रह्म संस्पर्श है मत्तं तं सुखम। तो प्रशांत मन से हम प्रशांत आत्मा प्रशांत शब्द होने से ये ऐसा शब्द होने से मैं एक बार चला गया छठी ध्यान के केगा के शुरू को प्रशांत आत्मा जो है इसको प्रशांत मन से हम योगी न सुखम मतलब सर्वं प्रशांत आत्मा विरक्त धीर ब्रह्मचारी वर्ते चित है मन संयम वचितो युक्त आसित मत पर है। वो भी ध्यान का ये भी ध्यान का वो सगुण का ये निर्गुण। अब ख्याल करना चाहिए प्रशांत आत्मा अच्छी प्रकार से जिसकी आत्मा शांत जिसका चित्त शांत विक्षेप का जहां अतंत अभाव उसको कहते हैं प्रशांत आत्मा। प्रकृति ने शांत आत्मा जिसकी उसको कहते हैं प्रशांत आत्मा और प्रशांत मन से उसी का नाम प्रशांत हो गया मन अच्छी प्रकार से जिसका मन शांत हो गया उसको प्रशांत मन से योगी न सुख भूति ऐसे योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कैसा सुख ब्रह्म ही या सुख के नाम से कहा है यहाँ सुख है तो ब्रह्म का बात है। प्रशांत मन से हम योगी न सुख भूति वो कही थी वो उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। कैसा पुरुष शांतम योगी नम सुख सुख शांत जिसका हृदय गुण शांत हो गया और ऐसा मनुष्य जिसका तमोगुण पाप शांत हो गया पाप रहित है। जो तमोगुण जो पाप से रहित है रजोगुण जिसका शांत हो गया है ऐसा समझो कि जो योगी है वो एक प्रकार से थी उत्तम जो सुख है उत्तम सुख यानी परमात्मा उसको प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विरक्त कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शः मत्तं तं सुखम्। और कैसा है पुरुष है ब्रह्म गुण सत रज तम तीन जो गुण है तीनों गुणों में दो गुणों से रहित होकर और शुद्ध सत्व के मन स्थित है उसको कहते हैं। तो इसमें शब्द आए ना खूब ध्यान देना चाहिए प्रशांत मन से हेरन में विक्षेप को अभाव शांत रजसम रजगुण को अभाव शांत हो गए अकलंसम पापा को अभाव तमोगुण को इसके भाव इसके अंतर्गत और ब्रह्मभूतम ब्रह्मभूत ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप कैसा कि मैं ब्रह्म तो मैं ब्रह्म हूं ये सात्विक भाव है और इसका फल वो गुणों से अतीत उत्तम उत्तम सुख को कही थी उत्तम सुख को प्राप्त होता है। तो उत्तम जो सुख है ये ब्रह्म को स्वरूप है ये गुणों से अतीत है सत्रस्तम तीनों गुणों से अतीत है। तो ऐसा जो सात्विक ध्यान करने वाला ब्रह्म ब्रह्म की स्थिति है वो उसी को प्राप्त होता है ब्रह्म को प्राप्त होता है। कैसे युंजने सदात्मानं योगी विरक्त कलमश विरक्त कलम से योगी कलम से जिसका पाप नाश हो गया ऐसा योगी सदा इस प्रकार से साधन करता हुआ सुख पूर्वक जो है ब्रह्म प्राप्ति रूप जो सुख है ब्रह्म संस्पर्श माने ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख सुखी है ना ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुख मे अत्यंत जिसका अंत नहीं जिसकी सीमा नहीं ऐसे अत्यंत सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है यानी अस्मते ऐसे ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख का सुख पूर्वक अनुभव करता है कोई परिश्रम का काम नहीं अनायास ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार साधन करना चाहिए ब्रह्मभूत पुरुष जो है वो किस प्रकार से अनुभव करता है साधन करता है ब्रह्मभूत तो ब्रह्मभूत का क्या है योग युक्त आत्मा ब्रह्म के माध्यम की आत्मा युक्त है वो योग युक्त आत्मा ब्रह्म के मानने की स्थिति है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म भूत है, ब्रह्मास्मि। ये ब्रह्म भूत जहाँ जाया है वह ज्ञान के निर्गुण की उपासना के विषय में, अद्वैत के विषय में जहाँ गीता में दिला दिला है। योग सुख अंतरा राम है तथा अंतर ज्योति रेवे स योगी ब्रह्म निर्वाणम और ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ब्रह्म भूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त, वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है या ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है जिसका अंत नहीं है, उत्तम सुख को प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से थी वो कैसे देखता है साधन काल के मन, उसकी स्थिति देह में नहीं रहती, उसकी स्थिति रहती है ब्रह्म, और ब्रह्म के अंदर ये संसार है और ब्रह्म ही की आत्मा है, देह उसकी आत्मा नहीं। तो सर्वभूत समात्मान आत्मा को अपने आप को सारे भूतों में देखता है और अज्ञानी देह मात्र में देखता है। अब वो महात्मा ना, उसकी आत्मा तो बहुत बड़ी है, तो सारे भूतों में सारे प्राणियों में चराचर सब जीवों के मां अपनी आत्मा को देखता है। तो बोलो सब जीवों में सब प्राणियों में तो परमात्मा है, तो यही तो बतलाया जाता है वो परमात्मा बन करके के अपने आप को सारे भूतों में देखता है। सारे भूत ही मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, सब कुछ मेरे स्वरूप है, मेरी आत्मा है, मैं हूं। सर्वभूतानि चात्मनि, और आत्मा के एक अंश में सारे भूतों को देखता है। बोले ऐसे तो भगवान देखते थे, तो बोले वो भगवान बढ़कर देखता है। अथवा बहु नेते किंग जाते अर्जुन है अदित्य वह मिदन कृष्ण मेका अंशे स्थित हो सकते, अर्जुन तुम्हारे को भूत जानने से क्या प्रयोजन है, इस सारे ब्रह्मांड को मेरे एक अंश के मां तुम अस्वस्थित देखो। तो बोले महाराज दिखाओ। तो फिर एकादश अध्याय के बीच के मां ये जो मैंने श्लोक बोला ये दसवीं अध्याय का 42 का श्लोक है कि अथवा बहु नेतन किंग ज्ञाते तो अर्जुन ने, और फिर एकादश अध्याय में अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान ने अपना विश्व दिखाया, सारा ब्रह्मांड अपने देह के मां दिखाया। तो इसी प्रकार से थी जो गणित रूप से ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है, तो ब्रह्म बन करके किस प्रकार से देखे वो कहते हैं कि ब्रह्म भूत पुरुष है एक सारे ब्रह्मांड को समझो कि अपने आत्मा में देखे, क्योंकि उसकी आत्मा तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म बन की आत्मा है, तो ब्रह्म बन करके अपनी आत्मा में सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के आधार देखता है, और संकल्प का त्याग कर दे तो बस ब्रह्म ही रह जाता है। अपने आप को उसे के मां अनुसूत रूप से व्यापक रूप से देखता है, जैसे आकाश है अनंत है, और अनंत आकाश के मां बादलों के समूह को आकाश कैसे देखे कि आकाश देखे कि मेरी आत्मा के अंदर है, और आकाश अपनी आत्मा को सारे बादलों में कैसे देखे कि अणु अणु के बीच के मां में सो व्यापक है, और सारे बादल क्या है कि आकाश से तो उत्पन्न हो आकाश में स्थित आकाश में विलीन हो जाए। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, सारे जो प्राणी हैं, सारी जो चीजें हैं, सारी सृष्टि है, उस आनंद में ब्रह्म से तो उत्पन्न हुए, आनंद में ब्रह्म के मां स्थित है और आनंद में ब्रह्म में विलीन। इसी बात को समझाने के वास्ते ब्रह्म सूत्र के मां आनंद में अभ्यासात ये सूत्र करके बताया कि बारम्बार वहां आनंद शब्द आया है, इस अभ्यास से यहाँ आनंद ब्रह्म का वाचक है, लौकिक आनंद का वाचक है। तो इस प्रकार से थी वो अनुभव करते, ये कौन सी बात बतलाई, ये बात बतलाई गई कि सारे भूतों को अपने आत्मा ही समझ, सारे भूतों को अपनी आत्मा ही समझ। तो चार प्रकार हो गया, एक तो ये कि सब जो कुछ हो मेरी आत्मा ही, और एक ये कि मैं जो आत्मा हूं मेरा तो कभी अभाव होता नहीं, और यह संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, सब चीज नाशवान है, सारे भूत प्राणी आदि में अव्यक्त अंत में अव्यक्त। तो इस प्रकार का जो देखना है वो अलौकिक आश्रय तपश्यति कश्चित ही न, कोई आश्रय माने कोई एक ज्ञानी महात्मा इस संसार को, कोई एक ज्ञानी महात्मा इस आत्मा को आश्रय क्यों देखता है, आश्रय क्यों देखना क्या है, बोले ये घड़ी है अरे इसको मैं अपने से पृथक देखता हूँ, ये कोई आश्चर्य थोड़ा ही, आप भी देखते हो मैं भी देखता हूँ सारी दुनिया देखती है कि ये घड़ी हमारे से अलग है। तो मैं देखने वाला पृथक है और घड़ी पृथक, ऐसे ये मशीन है ये हमारे से पृथक है, हम इसको अपने से भिन्न देखते हैं, सबको ही देखते हैं, तो ये देखना कोई हाथ सजा थोड़ा ही है। अपने से भिन्न नहीं, अभिन्न ब्रह्म बनकर के ब्रह्म का जो अनुभव होता है वो अपने से पृथक की जो नहीं होता वो ही आश्चर्य होता है। ब्रह्मवित ब्रह्मविर्भव होती, ब्रह्मविद्या ब्रह्म बन जाता है। अद्वैत के सिद्धांत ने, ज्ञान के सिद्धांत, अद्वैत को ज्ञान को, वेदांत का सिद्धांत को, अद्वैत बात को, तो उसके भीतर के बीच के मां एक प्रकार से उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को अपने से अलग नहीं देखता। ब्रह्म खुद ब्रह्म बनकर के ब्रह्म का अनुभव करता, और ब्रह्म का अनुभव जो अपने से पृथक बोलकर जो करते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकार से ये चार थी, चार प्रकार, चारों का फल एक, चाहे वहां निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, चाहे उसको आप आपने अमृत की प्राप्ति कह दो, चाहे ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, चाहे सुख की प्राप्ति कह दो, उसका विशेषण दे दिया यहां सुख का, अत्यंत सुख। यहां सुख के साथ के मां विशेषण लग गया वो हुआ ब्रह्म का स्वरूप का वाचक हो, और जहां सुख के साथ में विशेषण गुणों का दे दिया कि निद्रा आलस प्रमाद तामस मुदार, निद्रा आलस और प्रमाद से जो सुख पैदा हो तामस, इंद्रियां और विषयों के संयोग से जो सुख पैदा हो राजसी, आत्मबुद्धि प्रसाद जो सुख है वो सात्विक, तो सात्विक राजसी तामसी ये भेद कर दिया तो वो लौकिक सुख है। और जहां ये विशेषण आ गए कि सुख मातंति कम यह तत् और बुद्धि ग्राजम इंद्रियम वेति यत्र न सही वायु स्थित चलती तत्व, तो यहां अतंत जो सुख है वो ब्रह्म का बात है। वो कैसा है कि इंद्रिया की पूछने बुद्धि, वो बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी पुरुष सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, तो वहां यह बसा है उसका फल ब्रह्म की प्राप्ति। तो साधन काल के मां जो दिखने वाला जो सुख है और उसका फल रूप जो सुख है उसका भी भेद, जिस उसके साथ में विशेषण आ जाए, बाद सपशेष अशक्तात्मा और बिंदित आत्मनि यह सुखम स ब्रह्म योगी उतात्मा सुख है मक्षम अष्टमे। ये भगवान ने गीता की पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक में, इसका मतलब यह है कि बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित हुआ पुरुष, बाद सपशेष अशक्त आत्मा, सत रज तम तीन जो गुण है तक उनका जो विस्तार है, इन तीनों गुणों का जो विषय है वो बाहर के पदार्थ, और इनमें जिनकी आसक्ति है वो अज्ञानी है, मूढ़ है, और जिनकी इनमें आसक्ति नहीं है, इन आसक्ति से रहित है, वह साधक है, सात्विक पुरुष है, उस कोटि का साधक। तो बाद तपस्येषु अशक्त आत्मा, बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित पुरुष, और बिंदति आत्मनीय सुखम, जो आत्मा को ही सुख रूप से अनुभव करता है, आत्मा ही सो साक्षात परमात्मा है, इस प्रकार से अनुभव करता है ध्यान अवस्था के बीच में, अपने आप में ही उसे अपने सुख का अनुभव करता है कि मैं आनंद रूप सुख रूप हूं, सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म जो है उसके मां जिन की आत्मा युक्त है वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा। जहां बताया कि योग युक्त आत्मा, वो योग युक्त आत्मा और ब्रह्म योग युक्त आत्मा और ब्रह्म भूत, ये एक ही पुरुष के बात है। उसको क्या कहा, ब्रह्म योग युक्त आत्मा और सुख है मक्षम अष्टमे, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय क्या, जिसका अक्षय नहीं हो, और सात्विक राशि तामसी सुख है वो अक्षय नहीं है, वो तो लौकिक है, वो तो खैर होता है उसका। अक्षय सुख तो खुद परमात्मा ही है जिसका कभी नाश हुई, तो एक प्रकार से यहाँ तो स्त्रियों के मां बाद सप्रशेषात्मा बिंदती आत्मनि यत सुखम, आत्मनि यत सुखम बिंदती, आत्मा के मां सुख का अनुभव करता है। यहाँ एक प्रकार से तीन चीज, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे अनुभव करने वाला साधक, और जिसका अनुभव किया जाता है वो ब्रह्म, और आत्मा के अंदर अपने आप के अंदर अनुभव करता है, तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे अनुभव करता है ज्ञान से। ये साधन अवस्था का जो सुख है, यथ सुखम, ये सात्विक सुख है, आत्मबुद्धि प्रसाद्यम सुख है, ये वो सुख है कि परमात्मा का ध्यानावस्था के मां साधन की अवस्था में जो परमात्मा के स्वरूप का अध्ययन कर करके अपने समझ करके उसका जो ध्यान करता है, और इसका फल क्या है, अक्षय सुख की प्राप्ति। वह पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त होता है, अक्षय सुख क्या ब्रह्म, तो वो अपने गुणों से अतीत सुख का वाचक है। तो इस प्रकार से थी गीता के बीच के मां अनेक प्रकार से उसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रकार बतलाई, पद्धतियां बतलाई, किंतु सभी चार पद्धति के अंतर्गत है। जितना जो ज्ञान का उपदेश है, अद्वैतवाद का उपदेश है, भक्ति की जो बात कल कही ना, वो बात इससे सबसे अलग है। हाँ, तुम जो कि तीन सता है, एक प्रकृति प्रकृति का कार्य रूप या जड़ संसार, और एक साधक जो जीवात्मा, एक परमात्मा, एक भगत, एक भक्ति, और एक भगवंत। भगवंत जो परमात्मा है, और भक्ति उसका साधन है, और भक्त साधक है। और यहां समझो कि एक ब्रह्म तो नित्य यथार्थ वस्तु है, और सब चीज जो है एक ही चीज है, बस नाना नहीं, तीन नहीं, एक ही, एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं। ये ज्ञान का साधन, ये जो आपको बताया, ये ज्ञान का साधन। अब ये ख्याल करना है कि केवल ज्ञान और भक्ति मिश्रित ज्ञान, और केवल भक्ति, और भक्ति मिश्रित ज्ञान, मिश्रित भक्ति। केवल ज्ञान तो हुआ कि केवल अद्वैत, केवल एक ब्रह्म के स्वाद दूसरी वस्तु नहीं, और एक भक्ति मिश्रित ज्ञान। भक्ति मिश्रित ज्ञान उसका नाम है कि भक्ति का उसमें मिश्रण है, भक्ति उसके बीच में साधन रूप से उसका मिश्रण। जैसे भाई ये गेहूं की रोटी और ये मिसी रोटी, तो मिसी रोटी में क्या होता है कि गेहूं विशेष रहती है, और उसमें चना का भी थोड़ा टून रहता है, वो मिश्रण हो गया उसका। तो किसी के में थोड़ा, किसी में ज्यादा, किंतु प्रधान तो गेहूं की रोटी है, गेहूं ही है उसमें प्रधान। तो ये जो कहा जावे कि भक्ति मिश्रित ज्ञान, तो भक्ति मिश्रित ज्ञान कहा तो ज्ञान ही प्रधान हुआ, और भक्ति तो उसमें थोड़ी मिली हुई है, भक्ति उसमें मिली हुई है। तो भक्ति मिश्रित ज्ञान कौन सा, और एक केवल भक्ति, और उस भक्ति में थोड़ा मिले हुआ ज्ञान। प्रधान तो भक्ति है, किंतु उसमें थोड़ा ज्ञान भी मिले हुआ है। तो उसमें ज्ञान मिला हुआ है, खास भक्ति है, और इसके बीच के वहां भक्ति तो मिली हुई है, और खास ज्ञान। तो ज्ञान प्रधान। अब उस श्लोक को आपको बता, तो केवल भक्ति के श्लोक तो आपको बहुत से बताए, अथवा दिग्दर्शन करा दूं कि जैसे 9वीं अध्याय है, और 9वीं अध्याय के बीच के मां प्रकरण चला, पत्रं पुष्पं फलं सोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्तु प्रीतये मश्नामि प्रियसासने यत्र करोति यदश्नाति यज्जुहोषि ददाति यत् यत् तपसि कौन्तेय तद् पुरुषम् अर्पणम्। तो यहां से चले जाओ, यहां से केवल भक्त, इसके बीच के मां मिश्रण जो है, न ज्ञान को है न कर्म को। कर्म को मिश्रण इन श्लोक में तो ले सको कि यत करो थी या दर्शनार्थी ये जो होती, या कर्म और आपने भक्ति दोनों मिल गया, किंतु इससे फिर आगे बढ़ जाओ। ये 27-28 के श्लोक को बाद देकर के यहाँ से पकड़ लो कि समोहन सर्वभूते सुनमे द्वे सोचने प्रिय ये भजन की तुम भक्त्या मई ते सुपम अति ते सु दुराचारो भजते मामन्यवाद साधुरेव समं दव्य समग्र व्यर्थितो इति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा।